चौथा अध्याय। अंतिम दशक के उपन्यासों में स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता और पितृसत्तात्मक समाज ब्रैकेट में विशेष संदर्भ छिन्नमस्ता आवां मुझे चांद चाहिए ब्रैकेट क्लोज। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले विषय, पहला, अर्थसत्ता की राजनीति और स्त्री मुक्ति की अवधारणा, दूसरा, पुरुष क्षेत्र बनाम स्त्री क्षेत्र, वर्चस्व और चुनौती, संदर्भ छिन्नमस्ता, तीसरा, अर्थसत्ता, स्त्री शर्म और स्त्री देह, संदर्भ आमा, चौथा, बाजार, प्रेम और पहचान की राह, संदर्भ मुझे चांद चाहिए। पृष्ठ संख्या 99। पहला विषय, अर्थसत्ता की राजनीति और स्त्री मुक्ति की अवधारणा। पहला पैराग्राफ। दुनिया भर के स्त्रीवादियों एवं स्त्री विमर्शकारों ने पितृसत्ता के मूल में अर्थ की सत्ता एवं इसकी राजनीति को माना है। विवाह एवं परिवार संस्था का निर्माण हो या फिर वैश्यावृत्ति, सती प्रथा तथा विधवाकरण जैसी स्त्री व्यक्तित्व विरोधी परंपराओं का प्रचलन, इन सब के पीछे यदि कोई एक कारण है तो वह अर्थसत्ता ही है, जो हमेशा से पुरुषों के हाथ में रही है। कालांतर में उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर कर दी गई स्त्री जाति केवल सेवा के उपयुक्त ही ठहरा दी गई। नतीजन अनंत काल के लिए स्त्री सेवक बन गई। यही नहीं, देह और अर्थ की ताकत पुरुषों के पास तुलनात्मक रूप से अधिक होती गई। अतः स्त्री जाति अपनी भूमिका को जननी एवं सेविका तक ही सीमित करने को मजबूर हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो गृहदासी और यौनदासी की अपमानजनक भूमिका स्त्री जाति अपनी अर्थदासता की वजह से ही स्वीकार करने को मजबूर होती रही। अर्थ की दासता ताकत एवं सत्ता की दासता के रूप में परिभाषित की गई है। विचारकों के अनुसार, जैसे जैसे स्त्री जाति उत्पादन एवं हिस्सेदारी की प्रक्रिया से बाहर की जाती रही, वैसे वैसे पितृसत्ता और मजबूत एवं स्थायी बनती चली गई। अगला पैराग्राफ। संस्था एवं व्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुकी पितृसत्ता ने स्त्री मात्र को वस्तु, धन, माध्यम तथा योनि में तब्दील कर दिया। कालांतर में स्त्री गर्भ और योनि तक सीमित कर दी गई। पुरुष होना मात्र ही एक विशेष अर्थ में पूर्णता, विजेता और मालिक का द्योतक बन गया। इसके ठीक उलट स्त्री मात्र का मतलब हो गया अपूर्ण, पराजित एवं सेविका। यानी भौतिक रूप से स्त्री का दर्जा हर क्षेत्र में दोयम सिद्ध कर दिया गया। पराजित देह और दमित स्त्री मन ने इसे स्वीकार भी कर लिया। परिणाम स्वरूप स्त्री धर्म और पुरुष धर्म अलग-अलग रूप में विकसित एवं परिभाषित होता चला गया। अपराध एक और सजा, अलग-अलग का विधान कायम हुआ। स्त्री भोग्या बनी और पुरुष भोक्ता। चूंकि सत्ता पुरुषों के पास थी, अतः कर्ता का पद पुरुष को ही मिला। यही कर्ता अनिवार्यतः भोक्ता बना। पुरुष जाति के इसी कर्तापन ने उसे निर्माता एवं सृष्टा का ऊंचा आसन प्रदान किया। वह विधायक बना, ईश्वर बना, धर्म रचा, कानून गढ़ा। वही प्रथम हुआ, इतिहास उसका हुआ, विज्ञान उसका हुआ। उसके इस विशाल एवं विस्तृत घेराव में स्त्री या तो अनुपस्थित रही या फिर माध्यम का दर्जा पाकर संतुष्ट करार दी जाती रही। पृष्ठ संख्या 100। अगला पैराग्राफ। गौरतलब है कि आधुनिक स्त्रीवादी दृष्टिकोण स्त्री पुरुष भिन्नता को दो धरातलों पर रेखांकित करता है, जिसमें पहला है जैविक पक्ष और दूसरा है सांस्कृतिक। जाहिर है, इस दूसरे पक्ष की निर्मिति में अर्थसत्ता की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थ की सत्ता ही धर्म, मूल्य, परंपरा और राजनीति का निर्माण और उसका संचालन करती है। यही वजह है कि सभी स्त्रीवादियों ने सभी धर्मों को स्त्री व्यक्तित्व विरोधी ठहराया है। समकालीन उत्तर आधुनिक बहसों के केंद्र में मूल रूप से इसी सत्ता विमर्श एवं सत्ता की राजनीति का पर्दाफाश देखने को मिलता है, जिसका एक महत्वपूर्ण पक्ष पितृसत्ता की बुनावट एवं इसकी कार्य पद्धति में जांच एवं आलोचना है। उत्तर आधुनिक विचारक मिशेल फुको सभी तरह की आधुनिक व्यवस्थाओं, अनुशासनों एवं संस्थागत मूल्यांकन पद्धतियों को गहरे संदेह की नज़र से देखने की सलाह देते हुए कहते हैं कि सब कुछ को किसी काल विशेष की शक्तिशाली व्यक्तियों एवं संस्थाओं की निर्मिति मानो। सबके पीछे सत्ता है और सत्ता मूल रूप से ही केंद्रगत और षड्यंत्रकारी है। उन्होंने अपने अध्ययनों से यह भी सिद्ध किया कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। वे अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में स्त्री पुरुष की यौनिकता को भी संस्था एवं संस्कृति निर्मित बताते हुए साफ साफ कहते हैं कि पुरुष जाति ने अपनी यौनिकता की मनचाही व्याख्या करते हुए स्त्री जाति की यौनिकता पर आधिपत्य जमाया है। ऐसा मूल्य गढ़ा है जिससे पुरुष की यौनिकता श्रेष्ठ, प्राकृतिक एवं वर्चस्ववादी स्वीकृत हो सके। अगला पैराग्राफ सेवा और कर्तव्य का पाठ पढ़ती और पढ़ाती हुई स्त्री जाति आज अपनी परंपरागत छवि से अपने को पूरी तरह मुक्त कर लेना चाहती है। वह बंधी बंधाई भूमिकाओं और अपेक्षाओं से अलग एक नई पहचान और परिभाषा की तलाश कर रही हैं। इसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव मानकर चलें या स्वाभाविक परिवर्तन कारण माने, जो भी हो, अब इसमें दो मत नहीं रह गया है कि स्त्री मात्र की भूमिका बदल चुकी है या विस्तृत हो चुकी है। अगला पैराग्राफ आज स्त्री जाति हर उस पूर्वाग्रह और मिथ को बदल अथवा तोड़ देना चाहती है जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में आड़े आती है। सदियों से पुरुष संदर्भ में ही देखी, सुनी और पहचानी जाने वाली स्त्री अब अपनी एक पुरुष निरपेक्ष स्वतंत्र एवं स्वायत्त छवि गढ़ना चाहती है। अनुगामिनी की परंपरागत भूमिका से बाहर निकलकर वह कर्ता और नेता की विचारात्मक भूमिका में अपने को रख कर देखना और दिखाना चाहती है। कहने की ज़रूरत नहीं कि उसकी इस कोशिश को समकालीन राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों से बल भी मिला है। सूचना क्रांति और मुक्त बाजार जैसी बड़ी परिघटनाओं ने स्त्री के इस संघर्ष को ज़्यादा व्यापक और चुनौतीपूर्ण बनाया है। पृष्ठ संख्या 101।